الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس تفسیر کلاس کے اندر سورۃ الفرقان کی تفسیر ہم معرفۃ القرآن کی جلد نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں. یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں دوبارہ یہ پچھلے دو تین دن سے چل رہی ہیں, آیت نمبر 28, 27, 28, 29 سے لے کر 31 تک. تو پیج نمبر 468 کے اوپر یہ آیات ہیں یا 469 پر ان کی خلاصہ تفسیر ہے جو کہ ہم کل خلاصہ تفسیر پڑھنی شروع کر دی تھی ان کی. تو ان آیات کا ترجمہ خلاصہ تفسیر پڑھ کے اب ہم نے اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی. یہ جو اب بات انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی بہت یعنی بنیادی ترین حیثیت ہے کہ ہم اس تفسیر کلاس میں جیسے آ رہے ہیں یا دوسری کلاسز وغیرہ لے رہے ہیں, تو نیت ہماری کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے وہ اس علم کے اوپر عمل کرنا ہے, تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں, نیک بن جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں, جہنم سے بچ جائیں, جنت میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ نیت, یہی نیت ہونی چاہیے اور امید ہے کہ سب کی ہوگی بھی. تو اب اس کو اچیو کرنے کے لیے, یعنی یہ جو گول ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے, جنت کا گول, اللہ کی رضا کا گول, اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں کہ اگر وہ ہیں تو پھر یہ گول اچیو ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین گمان ہے کہ یقیناً یہ گول اچیو ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بنیادی باتیں نہیں ہیں تو پھر ہم بہت محنت بھی کرتے رہیں گے, بہت زیادہ کلاسز لے لیں گے یا نہ جانے اور کیا کیا کر لیں گے, لیکن اگر یہ بنیادی باتیں نہیں ہیں تو ہم یہ گول اچیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان بنیادی باتوں کو بہت بہت ہی زیادہ غور سے اور اہمیت کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اسپیشلی آیت نمبر 28 سے ہی بلکہ بات شروع کرنی ہے کہ قیامت کے دن یہ مجرم لوگ کہیں گے کہ اے کاش, اے خرابی میری, کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست, لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے فلانے کو, فلانا ایک جنرل ٹرم ہے کہ کسی کو, یعنی برے انسان کو, کیونکہ پیچھے سے جو پس منظر چل رہا ہے وہ کافروں کا چل رہا ہے, بروں کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر سمجھنے کی ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دوستی جو ہوتی ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کوئی کسی کا دوست کیسے بنتا ہے. اگر ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا سمجھ لینا تو ہم پھر یعنی صحیح دوست بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور برے دوست بننے سے پہلے ہی ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور دوسروں یعنی اپنے جو قریبی ہیں, ہماری اولادیں ہیں خاص طور پر, ٹھیک ہے, ان کو ہم برے دوستوں سے بچا سکیں گے. تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دوستی ہوتی کیا ہے. دوستی کا جو تصور ہے نا, वो हमारे दीन के अंदर बहुत बुनियादी तौर पर मिलता है, यानी बेस है हमारे दीन के अंदर दोस्ती, ठीक है। विलायत, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, वली का जो लफ्ज है वो उम्मीद तौर पर दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है। वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, राइट। फिर अल्लाह ताला इसी वली के लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं। औलिया का लफ्ज बहुत कॉमन हमारे दीन में इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के दोस्त वली, ठीक है। तो ये दोस्ती का मतलब ये होता है कि आपका किसी के साथ एक कल्बी ताल्लुक हो जाए, एक जिसको रूहानी रिश्ता भी कहते हैं, कल्बी ताल्लुक हो जाए, यानी आपके और उसके जो है ना वो एक जज्बाती ताल्लुक जिसको कहते हैं हमारे उर्दू जुबान के अंदर, ठीक है ना। ये जो जज्बाती ताल्लुक होता है ना, जिसके अंदर मोहब्बत के जज्बात होते हैं, उल्फत के जज्बात होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी हद तक होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको शदीद दोस्ती कहा जाता है, लेकिन किसी जगह पर मोहब्बत और उल्फत के जज्बात होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इन जज्बात के साथ ही दोस्ती होती है, राइट। ये नहीं होता कि आप किसी के साथ जो है वो जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कहना शुरू करते हैं कि हाँ मेरे मेरी उसके साथ दोस्ती है। भाई वो तो आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, राइट। या घर के अंदर कोई काम करने वाला आता है, ठीक है, तो उस काम करने वाले के साथ जो है वो आप मिलकर के अपने घर के अंदर कुछ काम करते हैं, जैसे मासियां, राइट, खवातीन जो है मासियों के साथ घंटों दिन के अंदर वक्त गुजारती हैं, तो वो तो एक मासी यहाँ पे आ रही है, काम करने वाली आ रही है, उसके साथ आपका वक्त तो बहुत गुजर रहा है, लेकिन आपकी उसके साथ दोस्ती नहीं है, अनलेस के वो हो जाए दोस्ती वो और बात है, लेकिन उम्मीद तौर पर होती नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं होता कि मासी चली गई घर से और बेगम साहिबा बैठी हुई रो रही है कि क्यों चली गई, है वो उसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजर रहा था, काश के वो वापस आ जाए और मैं उसके साथ और घंटों गुजारूं, ऐसा होता है क्या? ठीक है, उमूमी तौर पर तो किसी भी औरत का ऐसा हाल नहीं होता ना कि काम करने वाली चली गई या वो बैठ करके सोच रही है कि काश के वो वापस आ जाए, राइट। मिलने का दिल चाह रहा है, मासी साहिबा से जो है वो बात करने का दिल चाह रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है ना। तो इस वजह से नहीं होता, क्योंकि ये दोस्ती नहीं है, ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है, ठीक है। उसी तरह जॉब वालों के साथ भी ऐसे ही मामला होता है। तो दोस्ती तो वो होती है कि जिस शख्स से आपकी दोस्ती होती है ना, आपका दिल चाहता है उसके साथ वक्त गुजारना, दिल चाहता है कि आप उससे बात करें, और फिर अगला दर्जा क्या, दिल चाहता है कि आप उससे मुलाकात भी करें, ठीक है। यानी सिर्फ उसकी सोहबत में बैठना, इस तरह बैठना कि आप ना उससे बात कर रहे हैं और ना जो है वो कोई आपकी वन टू वन मुलाकात हो रही है, बस सोहबत में बैठे हुए हैं, बस आपका दिल चाह रहा है कि वो बेशक बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, मेरी तरफ मुतवज्जे ना भी हो, लेकिन मैं उनकी सोहबत में जाऊं, ठीक है, उनके पास बैठूं। जैसे कि किसी शेख का बयान होता है, मजलिस होती है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम जा करके उनकी सोहबत में बैठें, ठीक है ना। तो ये पहला दर्जा है, दिल चाहता है कि उनको बस देख लें, उनकी सोहबत में बैठ जाएं। दूसरा दर्जा ये होता है कि जरा वो मुझसे कलाम भी करें, कुछ शेयर भी कर सकूं मैं उनसे, राइट, और वो मुझे कुछ जवाब भी दें, बातचीत का दिल चाहता है, ठीक है। और इससे ज्यादा बड़ा दर्जा क्या होता है कि अब दिल चाहता है कि अब मैं उनसे मुलाकात भी करूं, देखूं भी सही उनको सही, यानी बहुत प्राइवेटली जिसको कि मुलाकात करना कहते हैं, ठीक है, और उनसे तमाम राज व नियाज जो है वो मैं अकेले में तन्हाई में शेयर करूं उनके साथ, ठीक है ना। ये सब दोस्ती के लेवल्स हैं, राइट, इसको दोस्ती कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से घर के काम काज करने वाली के साथ ऐसे आपके जज्बात नहीं होते, दफ्तर में काम करने वालों के साथ भी उमूमी तौर पर ऐसे जज्बात नहीं होते जब तक कि वो दोस्ती में तब्दील ना हो जाए। तो इस वजह से ये होती है दोस्ती। तो पहले दोस्ती को तो समझना जरूरी है, इसलिए कि बहुत हमने वही तफसीर की क्लासेस के अंदर जो बात करी है कि भाई अल्लाह ताला ने मना किया है गैर मुस्लिमों की दोस्ती से, ठीक है, और हमारे मशाइख ने मना किया है नाजिंस की दोस्ती से, नाजिंस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका भी वक्त नहीं है, ठीक है। तो अब हम सवाल करते हैं, तो क्या हम जो है वो हिंदुओं के साथ काम करते हैं तो फिर अब हम क्या करें उनके साथ, अब जो है वो इसके साथ काम करते हैं तो हम क्या करें, भाई अल्लाह के बंदे वो दोस्ती नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से ना इसकी तारीफ को समझना सबसे पहली चीज है, इसको समझेंगे नहीं तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब जब इसको समझ लिया ना, तो अब सवाल ये होता है कि ये दोस्ती जो है वो पैदा कैसे होती है, हाउ डज इट स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्ती स्टार्ट होने का तरीका ये होता है कि आप किसी के साथ जब थोड़ी सोहबत में वक्त गुजारते हैं, ठीक है, तो जब उसकी कोई अच्छी बातें, किसी भी तौर की अच्छी बातें आपको नजर आती है ना, आप उस महसूस करते हैं उसके अंदर किसी अच्छी बात को, चाहे वो उसकी अपनी जाती तौर पर अच्छी बातें हो या ये कि आपको उससे कुछ फायदा हासिल हो रहा हो, ठीक है, कोई आपको दुनियावी फायदा हासिल हो रहा हो, कोई आपको नफ्सियाती फायदा हासिल हो रहा हो, राइट, आपको अच्छा फील हो रहा हो उसके साथ वक्त गुजारने में, ठीक है ना, तो ये आपको एक फायदा हासिल हो रहा है, नफ्सियाती फायदा, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, तो इससे जो होती है ना आपके उसके साथ एक जज्बाती ताल्लुक पैदा हो जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो बच्चे की दोस्ती माँ के लिए, राइट, माँ के पेट में तकरीबन 9 महीने जो बच्चा रहता है ना, तो माँ को अगरचे की तकलीफें हो रही होती हैं उसकी वजह से, लेकिन उस बच्चे की मौजूदगी माँ के लिए इतना अच्छा नफ्सियाती एक एसेट होता है कि माँ उसकी मौजूदगी को अच्छा फील कर रही होती है, अपनी बीमारियों के बावजूद अच्छा फील कर रही होती है। 9 महीने तक जो वो बच्चे की सुहबत में रहती है ना, तो जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उसके बाद फिर माँ की जो मोहब्बत होती है उस बच्चे के लिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, राइट, तो ये मोहब्बत कहाँ से एकदम से पैदा हो गई? 9 महीने की सोहबत, और इस सोहबत में भी फायदेमंद वाली सोहबत, ये नहीं कि बच्चा अंदर से जो है वो उनको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था, खासकर बच्चा, ठीक है, तो फिर तो नहीं होती है मोहब्बत। लेकिन पता है कि बच्चा तो जानबूझ के तकलीफ नहीं पहुंचा रहा होता, वो तो अल्लाह ताला एक सिस्टम है कि भाई जब प्रेगनेंसी होती है तो एक तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो ये सोहबत जो होती है ना वो बच्चे की मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। बाप को देखें, बाप साहब जब बच्चा आता है ना घर के अंदर, तो बाप की वो कैफियत नहीं होती जो माँ की कैफियत हो रही है, क्योंकि बाप साहब ने पेट में नहीं रखा होता उसको, ठीक है ना, बाप की तो सोहबत में वो रह ही नहीं है बच्चा, बाप ने तो वो चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं करी है जिस तरह से कि माँ ने करी है। तो बाप को बच्चे के साथ जो एक अटैचमेंट शुरू होती है ना, एक तो इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट होती है जहनी तौर पर, हाँ कि हाँ भाई ये मेरी औलाद है, ये मेरा मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी और ये मेरा मददगार बनेगा बड़ा होकर के, या राइट, ये सारी जहनी बातें होती हैं, लेकिन ये कल्बी बातें नहीं होती। बाप बाप को बच्चे से कल्बी अटैचमेंट उस वक्त होती है जब थोड़ा वक्त गुजारता है वो अपने बच्चे की सोहबत में, और बच्चे की जो मासूमाना चीजें होती हैं, बातें होती हैं, उसकी जो हरकतें होती हैं, इससे जो उसको नफ्सियाती तौर पर एक बेहतरी अच्छी चीज फील हो रही होती है, इससे बाप के दिल में भी मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो सोहबत में रहना इस तरह से कि जब आपको फायदा हो रहा हो उस सोहबत से, तो ऐसे दोस्ती पैदा होती है। तो इसी वजह से जो सबसे नेचुरल दोस्ती है ना, तबी तौर पर ऑटोमेटिक दोस्ती है, वो माँ बाप की औलाद के साथ दोस्ती है, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, ये घर के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, मोहल्ले में जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो अब उनकी और दोस्तियां बनती हैं, ठीक है ना, तो ये जो और दोस्तियां बनती हैं ना मोहल्ले वालों से, मोहल्ले के बच्चों से या स्कूल के बच्चों से, तो ये दोस्तियां जो होती हैं ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जितनी स्ट्रांग माँ बाप के साथ दोस्ती होती है, ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि उनके साथ भी इनके सोबत में वक्त गुजरता होता है और उनसे भी इनको कुछ ना कुछ जो होते हैं वो मजे हासिल हो रहे होते हैं, तो दोस्ती बना लेते हैं उन बच्चों के साथ ये, ठीक है, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं होती ना जितनी माँ बाप के साथ होती है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप के साथ वो 4-5 साल आइडियली जो है वो कम अज कम डेडिकेटेडली उन्होंने लगाए हुए होते हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बाहर का बच्चा होता है या बाहर का कोई फर्द होता है जो कि चाहता है कि मैं इस बच्चे के साथ ऐसी दोस्ती कर लूं कि मैं मेरी दोस्ती उसके माँ बाप के साथ जो इसकी दोस्ती है उस पर गालिब आ जाए, ठीक है, उस पर गालिब आ जाए, अब ये जो शख्स है जो कि ऐसी दोस्ती बनाना चाहता है जो कि माँ बाप की दोस्ती पर गालिब आ जाए, तो ये शख्स जो है ना ये अच्छी नीयत वाला शख्स नहीं है, क्योंकि क्यों ये माँ बाप की दोस्ती से ज्यादा अपनी दोस्ती को बनाना चाह रहा है, क्यों बनाना चाह रहा है ये, ठीक है ना, और ये बच्चा भी कोई अभी कोई 15-16 साल का तो नहीं हुआ, ये तो अभी 4-5-6 साल का बच्चा है, तो क्यों ये ऐसी दोस्ती बनाना चाह रहा है, तो ये बदनीयत शख्स होगा, ये किसी गलत नीयत के साथ ऐसी दोस्ती बनाना चाह रहा है। तो अब ऐसे शख्स के लिए लाजमी है कि उस बच्चे की ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा दोस्ती हासिल करने के लिए जो है ना ये क्या करे, जरा आप बता दें अगर क्या क्या करनी है इसके लिए, सबसे पहला काम क्या जरूरी है कि बच्चे की यानी दोस्ती तो इसकी थोड़ी बहुत बन गई है, लेकिन माँ बाप की दोस्ती से कम गर्म जोशी वाली दोस्ती है। ये चाहता है कि मेरी दोस्ती माँ बाप की दोस्ती पर गालिब आ जाए। क्या करना पड़ेगा इसको ऐसा करने के लिए? जी आपसे सवाल किया जा रहा है। इसको सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी। अल्लाह के बंदे मैं कह रहा हूं बदनीयत इंसान है, राइट? तो बदनीयत इंसान अल्लाह से दुआ करेगा, ल्योर हिम विद थिंग्स द किड लाइक्स। थोड़ी बहुत दोस्ती उसको ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो ल्योर वगैरह कर चुका है, वो इतनी दोस्ती तो बन चुकी है ना उसकी। क्या नफी करनी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, माँ बाप की मोहब्बत कम कर देगा, जिन चीजों से माँ बाप रोकते हैं वो उसको देगा। बड़ा अकलमंद होगा ये वाकई। हाँ ये भी करेगा बिल्कुल, माँ बाप की मोहब्बत से जुदा करेगा, माँ बाप से बदगुमान करेगा। जी माँ बाप की मोहब्बत की नफी करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही फरमाया बाकी लोगों ने कि उसको, अच्छा इस तरह भी जरा देख लेते हैं क्या जवाब दे रहे हैं, कि माँ बाप की नफी और अपना एतमाद, ज्यादा टाइम देना होगा। खाली टाइम देने से दोस्ती नहीं बनती है, वरना माँ बाप के से ज्यादा और कौन टाइम दे सकता है। बहुत ज्यादा लाड करना होगा, हर जायज नाजायज फरमाइश पूरी करेगा, माँ बाप से दोस्ती कम करनी होगी। जो चीजें माँ बाप नहीं देते वो ऑफर करेगा, माँ बाप से बद जहन करेगा, माँ बाप से बदगुमान करेगा, एतमाद हासिल करना। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका जो जो कंक्लूजन है वो बेसिकली यही है कि माँ बाप की दोस्ती पर अपनी दोस्ती को गालिब करने के लिए लाजमी है कि ये माँ बाप से इसको बदगुमान करेगा, माँ बाप की नफी करेगा किसी तरीके से, ठीक है ना, उनको बुरा बना करके इसके सामने पेश करेगा कि देखो माँ बाप तो तुम्हें जो है ना तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, तुम्हें रोक टोक करते हैं और तुम्हारी बात नहीं मानते, हर बात तुम्हारी मानते नहीं है, थोड़ी सी मान लेते हैं, लेकिन ये तो कोई बात ना होगी ना, उनको तो हर बात माननी चाहिए तुम्हारी, राइट? तो ये किस किस्म की दोस्ती हुई? मैं देखो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, मैं देखो तुम्हें हर चीज ला करके देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? इस तरीके से जो है ना ये पहले माँ बाप की दोस्ती को काटेगा और अपनी दोस्ती झूठ सच हर तरीके से अपने आप को ज्यादा खैर ख्वाह और ज्यादा हमदर्द बना करके पेश करेगा, ठीक है? और बच्चा चूंकि बच्चा है, वो तो ना तजुर्बेकार है, उसके पास तो इतनी अकल इतना तजुर्बा कुछ भी नहीं है, तो वो इसकी इन हरकतों की वजह से वाकई इसको अपना ज्यादा बड़ा खैर ख्वाह मान लेगा, ठीक है? तो माँ बाप से बद एतमादी ये लाजमी है इसके लिए करना, ठीक है? दूसरा काम ये जो फिर साथ साथ ये भी करता रहेगा कि ये जो है ना उस बच्चे की बातों को बहुत तहम्मुल से सुनेगा। ही हैज टू बी ए वेरी गुड लिसनर। लिसनर होने का मतलब ये है कि अगला बंदा जब आपसे कोई बात कर रहा हो ना तो आप उसकी बात काटने की बजाय आप उसको बात करने दें, उसको वेंट करने दें, उसको अपनी सारा दिल का हाल आपके सामने बयान करने दें, ठीक है? तो इससे जो है ना वो अपना दिल आपके सामने हल्का करेगा और आप जो है वो उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है? तहम्मुल से सुनना ये सबसे पहली चीज है, टू बी एन एविड लिसनर, ठीक है? दोस्ती हासिल करने के लिए किसी की। दूसरी चीज हमदर्दी, राइट? जहां भी उसको कोई तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उसकी हमदर्दी के बोल बोलेगा, ठीक है? मैं तुम्हारा बड़ा खैर ख्वाह हूँ, हाँ वाकई तुम्हारे साथ ये लोग ज्यादती करते हैं, तुम्हें जो है वो इतना टाइम नहीं देते, तुम्हें इतना यानी तुम्हारी मदद नहीं करते वगैरह वगैरह, हमदर्दी के बोल, ठीक है? अच्छा एक और चीज करेगा कि ये उसकी छोटी छोटी बातों की, जो कि ज्यादा कोई इतनी अच्छी बातें नहीं भी है ना, ये उनकी तारीफ करेगा, ठीक है ना? ये बदनीयत इंसान ये तारीफ करेगा, जेन्युइनली या नॉन जेन्युइनली तारीफ करेगा, ठीक है? तारीफ करने से जो है ना वो बच्चा इसका इसका बन जाएगा, इसका होके रह जाएगा, ठीक है ना? चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बच्चियां तो और भी ज्यादा अल्लाह ताला ने मिजाज बनाया है औरतों का, ठीक है ना, उसकी भी अल्लाह ताला की हिकमत है, तो उसको ये एक्सप्लॉइट करेगा, तारीफ करके एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। और एक और बात ये करेगा कि ये उसकी किसी गलती को नेगेटिवली जज नहीं करेगा, गलतियां जो कर रहा होगा ना ये उसकी इस्लाह की फिक्र नहीं करेगा, ये उसकी यानी खैर ख्वाही के साथ जो है उसको गलती से रोकेगा नहीं, बल्कि गलती पर भी जो है ना ये या तो उसकी तारीफ करेगा या ये कि उसकी गलतियों को इग्नोर कर देगा, ठीक है ना, उसकी गलतियों को इग्नोर कर देगा, उसकी यानी हु केयर्स, ये गलती कर रहा है ये नुकसान उठाए मुझे कैसे, मैं तो चाहती हूँ बल्कि इसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो जजमेंटल, जिसको नेगेटिव जजमेंटल होना कहते हैं ना, वो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये चंद बातें हैं कि जिसके जरिए से कोई किसी का ज्यादा पक्का दोस्त बन जाता है, ठीक है, जिससे उसकी पहले से दोस्ती थी उसके बारे में बदएतमादी पैदा करना, ठीक है, जिससे ये दोस्ती बनाना चाह रहा है उसकी बात को बहुत तहम्मुल के साथ, गौर के साथ सुनना, ठीक है, हमदर्दी करना, तारीफ करना छोटी छोटी बातों की, ठीक है, और गलतियों के ऊपर जो है वो उसको मलामत और लानतान ना करना, ठीक है, अपनी खैरख्वाही की यकीन का यकीन दिलाना। इन चीजों के जरिए से क्या होता है, दोस्ती जो होती है ना वो पक्की होती है, गहरी होती है, हत्ता के ये दोस्ती दूसरी दोस्तियों के ऊपर गालिब आ जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर चूंकि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है वो बुरे लोगों का है कि बुरे लोग शख्स को जो है वो मैंने दोस्त ना बनाया होता, ठीक है, तो अब हमें जो है ये ख्याल करना है कि हमारी औदादों की भी जिंदगी में ना क्या ऐसे गैप्स तो नहीं हमने छोड़े हुए हैं, ऐसी चीजें तो हमने उनके साथ नहीं करी हुई हैं कि जिनकी जिन जिन गैप्स की वजह से या जिन लूप होल्स की वजह से कोई दूसरा उनकी जिंदगी में आ जाए और आ करके बड़ी आसानी के साथ हमारे बारे में उसको बदगुमान कर दे, हमारे बेटे को, हमारी बेटी को हमारे बारे में बदगुमान कर दे, राइट। कहीं हम अपने बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं है कि हमदर्दी नहीं करते, राइट, हमारा उनके साथ हमदर्दी का ताल्लुक नहीं है, तो फिर अगला बंदा आकर के उनसे हमदर्दी करेगा और वो जीत जाएगा उनके दिलों को, राइट। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अपने औलादों की तारीफ नहीं करते, जो उनकी जेन्युइन तारीफ करने के मौके होते हैं हम उनकी तारीफ नहीं करते, तो कोई आएगा और उनकी जेन्युइन और नॉन जेन्युइन बातों की तारीफ करके वो दोस्ती हासिल कर लेगा उनकी। क्या हम अपने औलादों के लिए बहुत नेगेटिवली जजमेंटल तो नहीं है, राइट, हर वक्त लानतान उनकी छोटी छोटी बातों को जो है वो रुसवा करते हैं उनको, राइट, उनके भाई बहनों के सामने उनको रुसवा करते हैं अपनी जुबान दराजी की वजह से, हमारा अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, राइट, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, मिजाज पे कंट्रोल नहीं होता, तो हम अपनी औलादों को रुसवा करते हैं उनके दोस्तों के सामने, उनके भाई बहनों के सामने या दूसरों के सामने, इवन इवन बड़ों के सामने भी रुसवा करते हैं उनको। अगर हम ऐसा करते हैं ना, दे हैव प्रोबेबली स्टार्टेड टू हेट अस ऑलरेडी, वो हमसे नफरत करना शुरू हो गए, तो अब अगले बंदे के लिए जो बाहर का बंदा है कोई, ठीक है ना, वो आसानी से आकर के जो है ना वो अब उनको हथिया के ले जाएगा और उनकी हमदर्दी करके नॉन जजमेंटल हो करके उनकी दोस्ती हासिल कर लेगा, ठीक है। तो भाई औलादों को शैतान से बचाना, चाहे वो इंसानी शैतान हो चाहे जिन वाले शैतान हो, उसके लिए इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे हैं ना तो फिर उनकी दोस्तियां जो हैं वो ऐसे जगहों पे बन जाएंगी कि जहां पर हम नहीं चाहते उनकी दोस्तियां बने, या जहां पर दोस्तियां बनना उनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना, फिर वो यही करेंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वो क्या है, तो वो आगे से जवाब देंगी, गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और आप जरा सोचें, जब आप शायद यानी नॉट ऑल ऑफ नॉट एवरीवन, लेकिन अक्सर हमारी नस्ल में से जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे ना, ठीक है, जब हम ग्रो अप कर रहे थे तो बहुत सारे हम में से ऐसे थे, अक्सर अगर ना भी हो तो बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो है वो दोस्त है, सबसे बड़ी नेमत जो है वो दोस्त है। वो कौन से वाले दोस्त? स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, सबसे बड़ी नेमत। तो कोई अगर हमसे पूछता कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का तुम्हारा दिल चाहता है वो क्या है, तो हम भी यही जवाब जवाब देते, गुड फ्रेंड्स, दोस्त हमारे, राइट। और हमारी मुराद वो अल्लाह वाले नहीं होते, हमारी मुराद जो है वो नेक मुत्तकी परहेजगार लोग नहीं होते, हमारी मुराद मोहल्ले के, स्कूल कॉलेज के, या ज्यादा से ज्यादा कजन ये होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ना तो माँ बाप के साथ वो मजबूत ताल्लुक बना हमारा, राइट, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं था कि करना क्या औलाद के साथ, राइट, कैसे औलाद को जो है वो अपना दोस्त बना करके रखना है, कैसे उनके साथ जो है वो कल भी ताल्लुक बना के रखना है, माँ बाप को पता ही नहीं था। और जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, उनके साथ तो हमारा कोई एक्सपोजर ही नहीं था, कभी उनको हमने देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला कि ये कौन लोग होते हैं। तो अब दोस्ती तो बनानी है ना किसी से, राइट। ये दिल तो क्या है वो शेर, दिल बहरे मोहब्बत है, दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा लाख इसको बचा तू, ये किसी पर तो मरेगा, राइट। तो हर इंसान के पास एक दिल होता है ना, उसने किसी ना किसी के ऊपर तो मरना होता है, जितना आप उसको बचा लें वो कहीं ना कहीं जा करके तो ठुकेगा। अब अच्छी जगह पर नहीं ठुकेगा तो बुरी जगह पे जा करके ठुकेगा, राइट, क्योंकि ये बहरे मोहब्बत है, इसने मोहब्बत करनी है, ठीक है। और मोहब्बत ही को दोस्ती कहा जाता है, मोहब्बत ही के रिश्ते को, ठीक है। तो यही यहां से ही सारी की सारी हमारी जिंदगी के फैसले होते हैं, आपने कहां दोस्ती बनाई है। तो अगर बुरी जगह पे दोस्ती बन गई है ना, तो फिर उसके बाद जिंदगी तो, कल वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के वो कौल भी सुन लिया था कि बुरा दोस्त तो शैतान से भी, यानी जिन शैतान से भी ज्यादा बुरा होता है, जिन शैतान तो सिर्फ वसवसे डाल सकता है, ये तो हाथ पकड़ करके गुनाह करवाता है। तो जब एक दफा दोस्ती लग गई ऐसी जगह पर, तो अब तो बस आगे का सफर ही चलता रहेगा बुराई के रास्ते के ऊपर, राइट। तो बच्चों को अपने दोस्त बनाने की जरूरत है। और अगर हम इस, यानी हम अपने बारे में बात करते हैं, तो हमें फिर नेक लोगों को चुन करके दोस्त बनाने की जरूरत है, ठीक है। इसके ऊपर हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और जो हमारी पुरानी दोस्तियां बन चुकी हैं, अब अल्लाह ताला ने कुरान को सुनने की, कुरान की समझ को हासिल करने की तौफीक अता फरमाई है ना, तो अब उन दोस्तियों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो आपका उनके साथ एक कल्बी मोहब्बत का जज्बाती ताल्लुक जो था ना, इस ताल्लुक को निकालना पड़ेगा। बेशक आप उनसे अपनी मुलाकातें जारी रखें, हम ये नहीं कह रहे कि बस अब उनको जो है वो अब आइंदा उनकी शक्ल में देखिएगा, ठीक है ना, अब उनसे जो है वो बिल्कुल मुलाकात खत्म कर दें, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, मुलाकात बिल्कुल खत्म कर देना जरूरी नहीं होता। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो मोहब्बत और दोस्ती आ चुकी थी, ठीक है ना, इस मोहब्बत और दोस्ती को अंदर से निकाल करके इसको एक वर्किंग रिलेशनशिप की शक्ल में वापस लाना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि जिन ना जिन्स लोगों के साथ हमारी दोस्तियां बन चुकी थी, इन दोस्तियों को, यानी ये, यानी आपकी मुलाकात हो रही है दो लोग, आपकी उस बंदे से मुलाकात हो रही है जो कि मुसलमान नहीं है, जो कि बद किरदार है, बद अकीदा है, राइट, मुलाकात आपकी हो रही है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो आपकी जो कैफियात है ना, ये कैफियात अगर दोस्ती वाली बन चुकी हैं, मवालात वाली बन चुकी हैं, तो इन कैफियात को बीच में से निकाल दें, ठीक है, बस एक वर्किंग रिलेशनशिप इसको रहने दें। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने, जैसे कि हाँ, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर माशाल्लाह क्लास हो रही है, तो लैपटॉप का जो चार्जिंग केबल है, ये चार्जिंग केबल लगा हुआ है लैपटॉप के साथ, ठीक है, और ये केबल जो है ना वो पीछे दीवार के स्विच के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये तार तो लगा हुआ है, लेकिन इस तार के अंदर एक करंट भी दौड़ रहा है, करंट, राइट, जो कि लैपटॉप को चार्ज करके रखा हुआ है, राइट, एक खास ताल्लुक बना हुआ है लैपटॉप का जो है वो दीवार के कनेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो बेशक आप इस तार को रहने दें, बेशक तार को रहने दें, लेकिन पीछे से दीवार पर जो स्विच है उस स्विच को ऑफ कर दें। स्विच को ऑफ कर दिया, तार अभी भी लगा हुआ है, लेकिन क्या करंट पास हो रहा है आप? नहीं, करंट तो पास नहीं हो रहा ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, खुसूसन जो रिश्तेदार हैं, राइट, उनके साथ तो मुलाकात करने का हुक्म भी है, राइट, दीन के अंदर है ना रिश्तेदारियां निभाने का। लेकिन इन रिश्तेदारियों के अंदर जो मोहब्बत वाला जो ताल्लुक है ना, ये ताल्लुक जो है ये मशरूत होना चाहिए। इसका ताल्लुक जो है वो दीन के साथ, तकवा के साथ, परहेजगारी के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ। अगर ये नहीं है दूसरी तरफ, बस ये जाहिरी ताल्लुक रहना चाहिए, बातनी ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये उसूल की चंद बातें आपको बताई हैं। अब एक्चुअली हमने इसको करना कैसे है अपने जाती जिंदगी के अंदर, इसके लिए तो फिर मशवरा करके काम करना चाहिए, वरना हम किसी कुछ का कुछ बना देते हैं। समझाई कुछ जा रही होती है बात, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने आते हैं ना अपने खानदानों के अंदर, तो उसको एक हम फसाद की शक्ल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो फिर उल्टा दूसरा ही मसला खड़ा हो जाता है। तो ये आपको हमने थ्योरी समझाई है बेसिकली। ठीक है, अपनी बदजुबानी को कैसे खत्म करें, जुबान को इस्तेमाल ही ना करें तो बदजुबानी भी नहीं होगी। दोस्ती में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम क्या रोल है, दोस्ती में मुस्लिम एंड नॉन नॉन मुस्लिम का क्या रोल है। नॉन मुस्लिम के साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती से मना किया है, हराम है। ठीक है, कुरान के अंदर एक से ज्यादा जगहों के ऊपर इसके ऊपर अल्लाह ताला ने यानी मुसलमानों को मना किया है। और अगर आपको मजीद तफसील इसके ऊपर समझनी है, तो हमारी जो तफसीर की क्लासेस पिछले चंद महीनों में हुई हैं, उनके अंदर इस टॉपिक पे बहुत तफसील के साथ बात हुई है। तीन चार क्लासेस में हमने उन तमाम आयात की तफसीर पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आप क्लास के बाद वेबसाइट वेब वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर याद दिला दें, तो ये भी एक तरह एक और टॉपिक है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करना चाहिए, उन क्लासेस का लिंक, उनकी रिकॉर्डिंग्स का लिंक, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नॉन मुस्लिम्स के साथ किन कैसे मामला जो हैं वो जायज़ हैं और कैसे मामला नाजायज हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया दोस्ती के बारे में चंद बातें। और अब ये दोस्त जो होते हैं ना, ये जैसे कि कल समझाया था कि ये जिन्नों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। ठीक है, जिन दो तरह के होते हैं, ईमान वाले जिन, काफिर जिन। ठीक है, तो जो ईमान वाला जिन होगा तो वो तो इंसानों के साथ उसका कोई खास ऐसा नहीं होता कि वो बैठ करके इंसानों से दोस्तियां लगाने की कोशिश करें। ठीक है ना, ईमान वाले जिन जो होते हैं ना, वो अपना काम करते रहते हैं, वो बस मुस्तकिलन इबादत करने वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, उनकी अगर दोस्ती किसी इंसान के साथ बनती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिदायत हासिल करने के लिए बनती है। ठीक है ना, यानी जो ईमान वाले जिन होते हैं वो इंसानों से जो जो इंटरेक्शन करते हैं ना, वो सिर्फ बहैसियत मुरीद और बहैसियत शागिर्द के करते हैं। ठीक है, यानी इंसानों में बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे तो उनके पास आया करेंगे ईमान वाले जिन। ठीक है ना, वो आम हमारे आपके जैसे लोगों के पास नहीं आते, हाँ भाई क्या ख्याल है, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं, आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस के मसले हैं, नहीं ऐसे ये सब उनके पास टाइम नहीं होता इसका, वो हमारी तरफ फजूल वक्त नहीं जाया नहीं करते। ठीक है, उनके हम कोई सोशल मीडिया वगैरह टाइप की भी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो वो इबादत करते रहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा नेकी की जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे जिन जो होते हैं, शायद जो जो के गुमराह जिन होते हैं, काफिर जिन होते हैं, जिनके लिए शैतान का लफ्ज उमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है, अल्लाह ताला ने इनको क्या सलाहियत दी हुई है कि ये इंसानों को के जहनों के अंदर ना वसाविस डालते हैं, आइडियाज डालते हैं। ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वसवसे डालने के अलावा, जैसे कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की उस इबारत से भी साबित है और हमारे मशायख भी हमें ये बात समझाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काफिर जिन होते हैं ना, कभी कभी एज एन एक्सेप्शन, ठीक है, एज एन एक्सेप्शन नॉट एज अ रूल, एज एन एक्सेप्शन कभी कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इन काफिर जिनों को स्पेशल परमिशन दी जाती है, स्पेशल परमिशन, ठीक है, किस बात की, कि वो इंसानों के साथ जो है ना वो यानी फिजिकल नुकसान का भी मामला कर सके, मादी नुकसान, फिजिकल नुकसान, ठीक है, उसका भी मामला कर सके। ये स्पेशल परमिशन होती है, ये उमूमी परमिशन नहीं होती इन जनों को, ठीक है, काफिर जनों को उमूमी परमिशन नहीं होती, ठीक है। तो ये जो स्पेशल परमिशन होती है ना वो किस वजह से होती है, या तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश होती है इंसानों के लिए कि ये जिन जो हैं वो आकर के इंसान को कोई तकलीफ पहुंचा सकें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, अगर आप में से किसी से पूछें, तो आप लोगों से पूछें, सबसे बड़ी मिसाल इसकी, जब तक मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ, कि जबकि अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए जिन को इजाजत दी कि जाकर के फिजिकल हार्म पहुंचाओ, ये कब हुआ था जी, उस तरफ भी मर्दों की तरफ, खवातीन की तरफ तो सही जवाब आ गया माशाल्लाह। कहा जाता है जिनको जिन मामू बोलना चाहिए, माशाल्लाह, जिनको जिन मामू बोलना चाहिए, आज तक हमने तो नहीं सुना, अलबत्ता चंदा मामू जरूर सुना था, चंदा को जो है मामू बोलना चाहिए, क्योंकि अम्मी के लिए सबसे ज्यादा जो करीबी रिश्तेदारी होती है उनके भाई होते हैं, तो बच्चों को फिर चंदा मामू सिखाती है, यानी क्योंकि चंदा लग रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो ये तो मामू ही हो सकता है खाली, मेरा भाई हो सकता है खाली, लेकिन ये जिन मामू वाली बात पहली दफा सुनिए, पता ये कैसे वसवसे डाल देते हैं, ये कैसे वसवसे डाल देते हैं भाई, मैंने कभी इनसे पूछा तो नहीं है कि आप कैसे डालते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने बल्कि एक हदीस में बताया है कि ये जो जिन है ना, हर बंदे के साथ एक जिन तो मिनिमम एक जिन हर इंसान के साथ लगा हुआ है, राइट, शैतान कहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कोई अच्छे नियत के साथ नहीं लगा होता, बुरी नियत के साथ लगा होता है, तो एक शैतान हर इंसान के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना कैसे फिजिकली ये कैसे काम करता है कि इसको, यानी बाकायदा कुछ अजीब गरीब किस्म की इसकी शक्ल होती है, कि इसको अल्लाह ताला ने ना एक सूंड नुमा चोंच दी हुई होती है, या चोंच नुमा सूंड दी हुई होती है, या सूंड नुमा चोंच दी हुई होती है, ठीक है। और ये जो है ना उस, यानी गोया कि एक सिरिंज की तरह से, एक नीडल की तरह से, और ये जो है ना वो उस नीडल को जो है वो इंसान के दिल में, या इंसान की रूह में, रूह का लफ्ज ज्यादा समझ में आता है हमें, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, लेकिन दिल से मुराद रूह ही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना इस सुई को जो है ना वो चुभोता है, और इस सुई के जरिए से बाकायदा ये वसाविस जो होता है वो हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आपने जो तरीका पूछा था, तो तरीका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया, बाकी उसकी तफसील कि कैसे होता है, इसकी बायोलॉजिकल यानी इंग्रेडिएंट्स तो नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि जिसमें अल्लाह ताला ने यानी शैतान को जो है ना वो बाकायदा परमिशन दी कि अच्छा जाओ, जा करके ना इनको ऐसे कर दो, इनको वैसे कर दो, जो तुम चाह रहे हो कर दो, ठीक है। तो यही बात है कि हमारी जिंदगियों में जो जिन्नों वगैरह के इतने सारे ड्रामे चल रहे होते हैं ना, ठीक है ना, तो अक्सर तो ये वहम होते हैं खाली, ठीक है ना, ऐसी जो है वो हम जिन्नों को जो है अपने ख्वाबों में देख रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा हमने जिन जिन के तमाशे बनाए हुए होते हैं, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो हमारा अपना ही नफ्स होता है बेसिकली जो है ना, जो कि यानी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, या वायरस की वजह से बीमारी होती है, ठीक है, या हमारी अपनी जो है वो बद एहतियाती की वजह से बीमारी होती है, लेकिन आमिर साहब के पास जाते हैं तो आमिर साहब कहते हैं जी जिन की वजह से बीमारी है, नहीं, फलाने साहब ने जो है वो तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, और उस जादू की वजह से जो है वो जिन आ गए तुम्हारे ऊपर, और जिन की वजह से तुम बीमार पड़ गए हो, तो अक्सर तो ये होता है वहम, ठीक है, असल में कोई जिन विन का ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमेशा वहम नहीं होता, बल्कि जिन होते भी हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो इन्वॉल्व जो है ना ऐसे ही नहीं होते कि चलते फिरते जो है वो एक जिन साहब जो है वो साइड में जा रहे थे मकान के बाहर, और एकदम से जो है उनको सूझी और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, हमारे घर के अंदर बसेरा बना दिया, राइट, और हमारे साथ जो है वो इस किस्म की यानी हरकतें करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। जिन जो है ना वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको स्पेशल परमिशन जब मिलती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, स्पेशल इजाजत मिलती है, तब वो हमारे साथ इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये चाहिए कि अगर वाकई जिनों का मसला निकल आया है ना हमारे साथ, तो हम जो है ना बजाय इसके कि यानी फजूल के कामों के अंदर और फजूल की बातों में अपना वक्त ज़ाया करें, हम जो है ना वो ये देखें कि ऐसा अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनको मुसल्लत करा क्यों है, राइट? किसी और के ऊपर तो नहीं किया, उमूमी तौर पर तो सारी दुनिया के इंसानों के ऊपर जिन मुसल्लत नहीं हुए हुए, राइट, यानी फिजिकल हार्म करने के लिए, तो हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत हो गए? हमने कौन सा ऐसा काम किया है? तो उस काम की इसलाह करनी चाहिए, ठीक है? और इसमें ना ये ठीक है, आमिल वगैरह के पास जाना जो है वो एक असबाब के दर्जे में उसकी इजाजत तो होती है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता है आमिलों की रास्ता जो है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना जो है ना उसके अंदर फ्रॉट विद डेंजर्स है वो रास्ता, कि बेहतर ये है कि उधर जाने की बजाय जो है ना वो रोना धोना शुरू कर दें अल्लाह के सामने, ठीक है ना, और अल्लाह ताला के ये होता है ना अल्लाह ताला के दर से चिमट जाए और माफी तलाफी करके ना इन जिन्नों की जिन्नों से अपनी खुलासी करवा लें, ठीक है? अल्लाह ताला जो है वो हमारे जो हमारे साथ जो स्पेशल मामला किया हुआ है कि जिन्नों को हमारे ऊपर छोड़ दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला इनको वापस खींच लेंगे, इनको फिर से जो है वो लगाम दे देंगे, मसला सारा का सारा हल हो जाएगा, ठीक है? तो ये जिन्नों वाला मामला जो है ना ये दवा दारू वाला मामला नहीं चलता, ये कि जैसे वायरस का अटैक हो गया हो तो चलो जी जो है वो फलाने आप क्लोरोक्विन ले लें या ये वाली दवा ले लें, एजिथ्रोमाइसिन आजकल जो चल रहे हैं, ठीक है ना, ये जे जिन्नों के साथ ऐसा मामला नहीं होता, ठीक है, कि बस उसके लिए आपको जरूरी दवाई लेनी है, राइट? सुन्नत नहीं है ये कोई, यानी जिस तरह दवा दारू जो होती है ना वो फिजिकल बीमारी के लिए सुन्नत होती है ना, ये यानी अमरियात वगैरह करना जो है ना, ये आमिल लोगों के पास जाना ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है, हमारे मशाइख मना करते हैं इसको, ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब एक असबाब के दर्जे में हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोच समझ करके, ठीक है? सुन्नत क्या है? सुन्नत तो मुअव्वज़तैन है, राइट, क़ुलौज़ बिरब्बिल फलक़ क़ुलौज़ बिरब्बिन नास, और कुरान की जो आयात है वो है बस ज्यादा से ज्यादा इन मसलों से हेल्प करने की सुन्नत, ठीक है? तो बहरहाल ये जिन्नों वाला मामला जो है इसको जो है ना वो हमने आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो बनाया हुआ है, जिसकी वजह से कि हमारे हालात खामखा की जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुए हैं और हमारा वक्त जिंदगी का बेइंतहा ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है? तो ये जो जिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेक जिन उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता, और बुरे जिन कि उनके पास टाइम ही टाइम होता है वसवसे डालने के लिए, और फिर उनको जब स्पेशल परमिशन मिलती है तो फिर वो कभी आकर के फिजिकल हार्म भी हमें पहुंचा देते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो दोस्त होते हैं ये सिर्फ जिन्नों में नहीं होते बल्कि इंसानों में भी होते हैं, नेक इंसान बुरे इंसान, ठीक है? तो अभी नेक इंसान की तो बात नहीं आ रही, यानी बुरा जो इंसान होता है तो वो हाथ पकड़ करके गुनाह करवा रहा होता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने फरमाया लकद अवलनी अन जिक्र बाद इज जाअनी वकान शैतान लिल इंसान खजूला, ठीक है? अब यहां पर अल्लाह ताला जो है वो इस फुलानन खलीला के अंदर तो सब शामिल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है ना वो यानी शैतान का भी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, कि शैतान जो है ना वो इंसान के लिए यानी बहुत ही ज्यादा दगा देने वाला है, कोई हमदर्दी नहीं रखता है ये, ठीक है? जो दुनिया की जिंदगी में तो ये झूठी हमदर्दी कर दिया करता है, लेकिन आखिरत में ये झूठे मुंह भी हमदर्दी नहीं करेगा, ठीक है? तो अब ये जो है ना ये हमें कैसे गुमराह करते हैं ये बुरे दोस्त, तो वो कैसे करते हैं? लकद अवलनी अन जिक्री बाद इज जाअनी, कि तहकीक के मेरे पास जब नसीहत आ गई होती है ना, पहुंच चुकी होती है, तो वो उस नसीहत से गुमराह कर देते हैं, हटा देते हैं उसके रास्ते से। अब यहाँ पर एक बड़ी रियल टाइम सिचुएशन जो है ना वो आपके सामने बयान करनी है, यानी बाकायदा हमारे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। वो क्या कि जैसे आपके सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि जी किसी ने जो है ना वो मतलब किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे किसी ने बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जी इस्लाही ताल्लुक बना लिया किसी शेख साहब के साथ, ठीक है? अब शेख साहब ने जो है वो उनको कहा कि भाई आप फलाने मामूलात कर लें, जैसे कि आप लोगों को भी चंद दिन पहले बताया था कि जी आप तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और ये करें वो करें, ठीक है? तो उन्होंने जो है वो करने शुरू कर दिए, और करके जो है ना उनको ये भी कहा था कि भाई आप जो है वो कुछ कुछ अरसे के बाद जो है वो बाकायदा इतला भी दें कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो कुछ अपडेट वगैरह भी करते रहें ताकि आपको जो है वो उसके मुताबिक यानी गाइड करते रहे कि आप अच्छा आप इसको बढ़ा दें, आप इस चीज को कम कर लें, आप ऐसा कर लें वैसा कर लें, गाइडेंस। ये तो पूरा का पूरा एक एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉलोअप भी करना होता है, इसके अंदर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजेस भी करने होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तब कहीं जाकर के इंसान की रूहानी इस्लाह होती है। अब जो ये साहब कर रहे हैं ना ये मामूलात, ठीक है ना, और मामूलात करते करते ये जो है वो अपडेट भी दे रहे हैं आगे शेख साहब को, ठीक है ना। तो अब ना इनके दिल में ख्याल आता है, इन मामूलात करने वाले साहब के जो कि अपडेट भी कर रहे थे शेख को, उनके दिल में ख्याल आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, राइट। ये जो मैं जो अपडेट दे रहा हूं ना, तो अब मुझे तो दिल के अंदर ये एक नियत है मेरी कि शेख साहब क्या कहेंगे अगर मैं मामूलात नहीं करूंगा तो अपडेट दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी, शेख साहब क्या कहेंगे, ठीक है। तो मैं जो ये मामूलात करके शेख साहब को अपडेट दे रहा हूं, तो ये जो अपडेट मैं दे रहा हूं ये अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहा, ये मामूलात अब मैं अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहा, ये मामूलात तो मैं शेख साहब को बताने के लिए कर रहा हूं ताकि शेख साहब के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो, है ना। ये ख्याल आता है, बात समझ में आ रही है क्या सिनारियो पेश किया जा रहा है कि किसी ने किसी शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया, डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशनशिप बनाया, डॉक्टर साहब ने उनको कुछ प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दिया, बता दिया कि जी आप ये मामूलात करें, और उनसे कहा कि वक्तन फवक्तन आप अपडेट भी देते रहा कीजिएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने मामूलात करने शुरू किए और शेख साहब को अपडेट भी करना शुरू किया। तो अब कुछ अरसे बाद इनके जहन में ख्याल आता है कि मैं जो ये जिक्र के मामूलात कर रहा हूँ, तस्बीहात कर रहा हूँ, तो ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि शेख साहब के सामने जो है मुझे रुसवाई ना हो, शर्मिंदगी ना हो, ठीक है। तो ये मैं अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहा, ये तो मैं शेख साहब के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका क्या नतीजा क्या निकाला उन्होंने, नतीजा ये निकाला कि मुझे शेख साहब को अपडेट नहीं करना चाहिए ताकि मेरे जो ये मामूलात है ना ये खालिसतन अल्लाह की खातिर हो जाए, शेख साहब वाली नीयत बीच में से खत्म हो जाए। अब इन्होंने जो ये अपडेट करना छोड़ा ना, तो अब उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि ये जो मामूलात कर रहे थे ना ये मामूलात खत्म हो गए, ठीक है। ये मामूलात खत्म, वो जो इनको एक गाइडेंस मिल रही थी शेख साहब से वो गाइडेंस मिलनी खत्म, ठीक है। अब इनकी जिंदगी जो है ना वो थोड़ी बहुत जो उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी वो इम्प्रूवमेंट भी खत्म हो गई, बल्कि शायद ये और ज्यादा इनके अंदर बुराई शुरू हो गई, इनके हालात के अंदर, इनकी जिंदगी के अंदर और गुनाह शुरू हो गए, ठीक है। तो अब मसला क्या है यहाँ पर, राइट। मसला क्या है, मसला ये है कि चूंकि हमारा कुरान के साथ तो रिश्ता नहीं होता ना कि हमें रिमाइंडर्स मिलते रहे अल्लाह ताला के निजाम के बारे में, अल्लाह ताला ने जो चीजें दुनिया में बनाई हैं, जो सिस्टम बनाया है उसकी रिमाइंडर्स मिलते रहे, हमारा कुरान के साथ तो ऐसा वास्ता नहीं होता, तो हम जो है ना वो भूल जाते हैं चीजों को, हम इंसान है ना निस्यान हो जाता है हमसे, हम भूल जाते हैं। ये जो हमारे ये जो इन साहब के दिल में जो ये ख्याल आया था कि तुम जो मामूलात कर रहे हो जिक्र के, तो ये तो तुम शेख साहब की खातिर कर रहे हो, अल्लाह की खातिर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि वो अपने आप से ये सवाल पूछते, अपने जहन के अंदर इस सवाल को इवैल्यूएट करते कि ये जो ख्याल आया है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो ख्याल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्या खुद ब खुद पैदा हो रहा है ये ख्याल, खुद ब खुद ये क्या चीज होती है, खुद ब खुद पैदा होना, खुद ब खुद कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो हम बुनियादी मुसलमान हैं ना कि अल्लाह ताला सब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला फ़ाइल हकीकी हैं, राइट। तो इसका तकाजा ये है कि हम खुद ब खुद के लफ्ज को अपने जिंदगी से निकाल दें, खुद ब खुद, राइट, ये नहीं हो सकता खुद ब खुद, या तो अल्लाह है या अल्लाह नहीं है, नाउज बिल्ला, राइट। अगर अल्लाह नहीं है तो फिर तो चीजें खुद ब खुद हो सकती हैं, जैसे ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, सारा का सारा जो है वो कायनात खुद ब खुद बन गई, दुनिया का निजाम खुद ब खुद चल रहा है, राइट। अगर अल्लाह नहीं है तो फिर ऐसा ही है, और अगर अल्लाह है तो फिर खुद ब खुद का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इत्तेफाकन जिसको हम उर्दू में कह देते हैं, ये कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो फिर जो भी फेल होता है, जो जो भी अमल होता है अल्लाह ताला का सिस्टम यह है कि हर अमल के पीछे कोई आमिल होता है, कोई करने वाला होता है उस अमल को, राइट। बगैर आमिल के अमल नहीं हो सकता, बगैर फाइल के फेल नहीं हो सकता। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ये ख्याल आया मेरे दिल में, तो ये ख्याल जो है ना ये खुद ब खुद नहीं आ सकता, इसको कोई डालने वाला है, कोई इसके पीछे है जो ये ख्याल डाल रहा है, ठीक है। तो ये कौन डाल रहा होता है इस किस्म के ख्यालात? ये शैतान डाल रहा होता है, शैतान डाल रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से ना वो क्या कर रहा है, कितने अच्छी बड़ी बहुत ही खूबसूरत बात को इस्तेमाल कर रहा है कि अल्लाह की खातिर तुम्हें अमाल करने चाहिए, अल्लाह की खातिर तुम्हें जिक्र करना चाहिए, ठीक है ना। वो इस बात को इस्तेमाल करके असल में क्या कर रहा है, असल में वो आपको ये जो आपने एक इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ था, अपने इलाज के लिए एक रिश्ता बनाया हुआ था, असल में आपके इस रिश्ते को मुनकता करना चाह रहा है। लेकिन अल्फाज जो है ना वो ये नहीं कह रहा कि तुम चलो 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 जाकर के म्यूजिक सुनो, तुम चलो जाकर के जो है वो आजकल खुदा खुदा हिफाजत फरमाए हमारी अर्तुगरल, क्या एक नई नहुसत आई है अर्तुगरल दा नाम है, क्योंकि कुछ पोस्ट आई है मेरे पास, इस तरह के मैसेजेस आए हैं, राइट। वो टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरल, वो अर्तुगरल बैठे बैठे हुए लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्तुगरल जो होते हैं ना वो जो जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, वो तो बहुत ही यानी बहुत ही गिरा हुआ अमल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई इतना गिरा हुआ अमल करता नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टीवी नहीं देखते हैं, तो जो टीवी नहीं देखते हैं तो उनको ये कैसे इस्लाही ताल्लुक से महरूम करता है? वो इसी तरह से इखलास की पट्टियां पढ़ा करके, इखलास की पट्टियां पढ़ा करके, ठीक है। कि वो तुम कौन सा, तुम तो शेख साहब की खातिर कर रहे हो, तुम कौन सा अल्लाह की खातिर कर रहे हो, तो छोड़ो शेख साहब को बताना, ठीक है ना। तो ये इखलास को इस्तेमाल करके वो नुकसान करवाता है। तो ये शैतान जो है ना ये बहुत बदबخت है, सबसे बड़ा बदबخت यही है, ये वन वे और दी अदर जो है वो बनी नौए आदम को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, राइट, कुछ करना पड़े, गंदी बातें इस्तेमाल करनी पड़े, ये गंदी बातें इस्तेमाल करेगा, यानी मौसीकी की तरफ डालेगा, शराब की तरफ डालेगा, टीवी टीवी ड्रामों की तरफ डालेगा, ठीक है ना। या इसको अच्छी बातें इस्तेमाल करनी पड़े, राइट, इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको अच्छी बातें इस्तेमाल करनी पड़े, ये अच्छी बातें भी इस्तेमाल करेगा, राइट, इखलास की बातें भी इस्तेमाल करेगा, राइट। ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है, इसका एंड रिजल्ट ये होता, एंड गोल इसका ये है इंसानियत को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो जब इतना खतरनाक दुश्मन जो है वो हमारे साथ हर वक्त लगा हुआ है, तो हम कैसे इसको भूल जाते हैं और ये सोचना शुरू करते हैं, खुद ब खुद ये ख्याल आ गया मेरे जहन में, राइट, खुद ब खुद कोई नहीं आता ये ख्याल, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये यानी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि बुरे दोस्त से बचने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा अच्छा दोस्त हो, अच्छे दोस्त होना जरूरी है। अगर अच्छे दोस्त नहीं होंगे ना तो फिर बुरे दोस्त से तुम नहीं बच सकते हो, ठीक है। और ये अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, ये अंग्रेजों ने जो 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 मुहावरे बनाए हुए हैं ना, ये अंग्रेजों के मुहावरों ने भी हमें बहुत मारा है। ए गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, इस फिल्म को कोई मुहावरा था ना कि यानी गुड बुक नहीं बल्कि बुक इज अ मैन बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो वो बुक को बना दिया फ्रेंड। अबे भाई बुक से नहीं होता मामला, जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं ना तो बुक पढ़ने की वजह से जो है वो शैतान नहीं भाग रहा होता, ठीक है, शैतान उधर ही मौजूद होता है, वो आपके जहन के साथ खेल रहा होता है। आप बेशक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हैं लेकिन शैतान तो है ना मौजूद, जो कि मैनिपुलेट करके उस बुक के मैसेज को आपके जहन के अंदर जो है वो कुछ को कुछ बना करके डाल रहा है, ठीक है। तो बुक जो होती है ना ये इंसान का अच्छा दोस्त नहीं होता, इंसान इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान वाला सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो इस बात को जरा समझ करके पल्ले बांधने की जरूरत है। अब मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, पहले काफी सारे आ गए, तो आगे बढ़ने से पहले, इंसान अगर जिक्र में मशगूल हो तो भी वसाविस आते हैं या वो ख्यालात होते हैं, वसाविस और ख्यालात जो होते हैं वो दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। करते हुए जो वसाविस आते हैं ना तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप जिक्र जो है वो जुबान से कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी जुबान मसरूफ होती है ना जिक्र के अंदर, तो लेकिन आपका जहन जो होता है वो तो जरूरी नहीं है कि आपकी जुबान का के साथ भी हो, ठीक है। तो जहन जो है वो तो आपका फारिग फारिग है, ठीक है ना। जैसे तस्बीह फेर रहे होते हैं, जहन में को थोड़ी आप सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ताला पाक है, जब सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला की पाकीजगी के बारे में सोच भी रहे हैं, राइट। ऐसा होता है आपके साथ तो फिर बड़ी अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता होगा ना तो फिर उस वक्त वसाविस आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जहन भी मसरूफ है जिक्र के अंदर, ठीक है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं तो अब आपके जहन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र कितना होना चाहिए, है? तो आपके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए कि अल्लाह की कैसी नेमतें मेरे ऊपर, और जुबान से जो है वो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। अब तो वो साबित आ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। जुबान से जिक्र कर रहे होते हैं, उसका फायदा कम अज कम क्या होता है कि अब आप जुबान से बुरी बातें नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं कर सकते, राइट, फोहश कलाम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि आपका जुबान, आपकी जुबान जिक्र में मशगूल है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अपने जहन से भी इन वसाविस को रोकना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो है ना, एक तो मशाइख जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कल्बी जिक्र, ठीक है। उसके लिए आपको कल्बी जिक्र करना पड़ता है। वो कल्बी जिक्र से फिर आपका कल्ब भी मसरूफ हो जाता है, आपका जहन, यानी एक बड़ा एक जरा तफसीली टॉपिक है, लेकिन आपकी रूहानी तौर पर आप मशगूल हो जाते हैं कल्बी जिक्र की वजह से। तो अब जो है ना ये वसाविस नहीं आ सकते, क्योंकि उधर वो आप बिजी हैं। जब बिजी हैं तो फिर कहाँ से, राइट, उस वक्त तो सॉरी आई एम बिजी, नो एंट्री, ठीक है ना। तो उस वक्त थोड़ी एंटर कर सकता है ये आपके वजूद के अंदर अपने वसाविस और ख्याल को, ठीक है। तो जुबानी जिक्र जो होता है एक अलग चीज होती है, कल्बी जिक्र अलग चीज होती है। इन हैदराबादी स्लैंग भी से जिन मामू है ना फनी हुए। अच्छा, वो तो फिर स्लैंग में है ना। इफ समथिंग हैपेंड एंड वी कुड नॉट सी एनी लॉजिक बिहाइंड इट वी से मे बी जिन मामू दिखते, ठीक है, दैट मेक सेंस। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं कि छोटे बच्चों के साथ भी जिन लगे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ जिन लगे हुए नहीं होते हैं, उनके साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा डायपर की गंदगी लगी हुई होती है, ठीक है। वो जिन जो लग करके जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ना, वो आपको समझा दिया है कि वो एज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है, जिन जो है वो किसी के साथ लग करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वरना वो ऐसे नहीं कि वो छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ लगे हुए, ठीक है। या जो कहते हैं कि हमारे घर पोजेस्ट है और इसी वजह से घर बदलते हैं, क्या ये सही है? सभी ठहर जाए, हमारी बेटी साहबा क्यों रो रही है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी एक चश्मा भी, ठीक है। तो वो बच्चों वाली बात हो गई। हम जिन को नहीं देख सकते, क्या जिन हमें देख सकते हैं? जी हाँ, जिन हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो चूंकि वहां पे लिबास हटाना होता है, तो अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस की दुआ पढ़ेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनकी निगाहों को भी रोक देते हैं हमारी तरफ से। और वैसे जब अपने कपड़े चेंज करते हुए जब लिबास हटाना होता है, तो उस वक्त जो है वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो है फिर जिन हमें देख नहीं सकते, ठीक है। अदरवाइज जो है वो जिन देख रहे होते हैं हमें, ठीक है। ये जो कहते हैं कि हमारे घर पोजेस्ड हैं और इसी वजह से घर बदलते हैं, क्या ये सही है? अगर बिल्कुल कंफर्म हो जाए, एक्सपर्ट्स जो आमिल और रिलायबल, ठीक है, ट्रस्टवर्दी आमिलों से अगर ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि हाँ यहाँ पर पोजेस्ड हैं, ठीक है ना, और आपसे जो है वो कोई और इलाज बन नहीं पड़ रहा कि उनको जी यहाँ से निकालें, या उनके साथ जरा क्या कहते हैं बीच बचाव करके, हैं जरा अमन का मुआहदा साइन करके उनके साथ को एग्जिस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी हरकतें, यानी ये सारे जो है वो इकदाम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना, फिर आखिर में यही चीज रह जाती है कि बस फिर आप वहां से घर बदल लें, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं, तो उसके लिए बस वही जैसे पहले समझाया था कि आमिलों वाला रास्ता जो होता है वो बहुत मुश्किल और खतरनाक रास्ता होता है, और यूजुअली जो है ना वो उससे कोई फायदा वायदा ज्यादा नहीं हो रहा होता, बस ये एक आपकी एक मुस्तकिलन की एक जंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंजनों के साथ, तो फिर उससे कोई फायदा वायदा नहीं होता। बहरहाल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के मसले हैं, तो ऐसे तो इस क्लास में सारी बातें उसको नहीं, और वैसे ही साजिश का कोई काम वाम नहीं है ये करना, ठीक है। तो बस आपको जनरल नॉलेज की बातें बता रहे थे। जो जिन इंसान के साथ अटैच होते हैं वो वसवसे हर वक्त डाल सकते हैं या कोई अमल की वजह से रुक भी सकते हैं। जो जिन हर वक्त का अटैच होता है वो जिन जो है ना वो हदीस मुबारक से बात साबित है कि जब इंसान का कल्ब अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तो उस वक्त जो होते हैं ना एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है, उसके कल्ब के अराउंड, कि अब ये जिन जो है ना वो अपनी सूंड को डाल नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से ना जब इंसान जिक्र करता है ना, कल्बी जिक्र, राइट, सिर्फ जुबान का तस्बीह फेरने वाला जिक्र नहीं, कल्बी जिक्र जब कर रहा होता है ना तो ये जिन जो है ना ये पीछे हट जाता है। इसी वजह से इसके लिए सूरह नास के अंदर खन्नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खन्नास का मतलब ही ये है, पीछे हटने वाला, और जैसे ही दोबारा मौका मिले फिर से अटैक करने वाला, फिर पीछे हटने वाला, फिर से अटैक करने वाला, ये खन्नास की तारीफ है, ठीक है। तो ये जो वसवसे डालने वाला शैतान हर एक के साथ लगा होता है ना, ये इसकी क्या एक पर्टिकुलर इसके लिए क्या नाम इस्तेमाल हुआ, अल खन्नास, ठीक है। तो जब जिक्र करता है इंसान ना अपने दिल में तो उस वक्त ये नहीं वसवसे डाल सकता, लेकिन गाफिल जैसे ही होता है अल्लाह की रात से वैसे ही जो है ना ये फिर वसवसे डालता है, ठीक है। लेकिन ये तो एक शैतान है, इसके अलावा जो पूरी फौज लगी हुई होती है ना, जैसे कि जब कोई निकलता है बेपर्दा घर से तो फिर एक पूरी की पूरी फौज जो है ना फिर वो उसके साथ साथ चल रही होती है, और वो फिर गिर्दो पेश के अंदर जितने लोग मौजूद होते हैं ना वो सब उसके उनके ऊपर जो है वो अमल कर रहे होते हैं ताकि उन सबको जो है वो बुरे रास्ते के ऊपर डालें, ठीक है। तो ये जो एक यानी क्या कहते हैं प्राइवेट शैतान है हर बंदे का, ये खाली एक नहीं होता बल्कि इसके यानी ये तो एक होता है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक निजाम है इनका। कुछ लोग बहुत ज्यादा जिन भूत और जादू की बातें करते हैं, क्या हम खुद भी इसी तरह सोच कि हम खुद भी इसी तरह सोचने लग जाते हैं, इसका हल यही है कि उनको अवॉइड किया जाए। हाँ, कुछ लोगों को जरा आदत पड़ी हुई होती है हर वक्त ही जिन भूत की बातें करने की, तो अगर आप उनको समझा नहीं सकते तो कम से कम उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी पड़ती है, ये एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों को जरा ये इस तरह की आदत लगी हुई है ना तो चाहिए कि हम उनको समझाएं कि बेटा इस तरह की बातें जो है ना वो ये सही नहीं है, ठीक है। कहानियां पढ़ के कर रहे हैं या वैसे ही जो है वो अपनी इमेजिनेशन की वजह से कर रहे हैं जो भी है, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। एक तो ये कि अक्सर इनमें से झूठ होता है, और झूठ जो होता है हर झूठ का एक असर होता है इंसान की दुनिया और आखिरत के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात ये कि यानी अगर ये सच हैं भी तो हर एक के साथ करने की बात इनको थोड़ी होती है, अपने पास रखें बस इनको, ठीक है। सही, लेकिन शेख साहब का भी कहीं क्या कहीं लिंक होता है, का भी क्या मतलब समझाने, और अच्छे ख्याल, जी अच्छे ख्याल के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भी साथ साथ रखा हुआ है, यानी इंसान का जो कल्ब होता है ना उस कल्ब के साथ एक फरिश्ता भी साथ हमेशा हमेशा रहता है, जिसको प्राइवेट फरिश्ता आप कह सकते हैं, ठीक है ना, और एक शैतान भी हमेशा साथ रहता है जिसको आप प्राइवेट अपना शैतान कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे ख्याल आते हैं ना वो अच्छे ख्याल जो हैं वो भी फरिश्ता डालता है, लेकिन अगेन वो फरिश्ता भी जो होता है वो इंडिपेंडेंटली अमल नहीं कर रहा होता, वो भी अल्लाह ताला की उसी को तौफीक कहते हैं एक्चुअली। ये जो हमारे जहन में आइडियाज आते हैं ना खुद ब खुद, जो अच्छे आइडियाज आते हैं वाकई अच्छे आइडियाज, ठीक है, वो अच्छे आइडियाज जो होते हैं ना वो वाया फरिश्ता आ रहे होते हैं, उस प्राइवेट फरिश्ते के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है। और वो फिर यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो उस फरिश्ते को बात यानी अल्लाह ताला ना जो अच्छे आइडियाज हमारे जहन में डालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अल्लाह ताला किसको इस्तेमाल करते हैं, या तो उस प्राइवेट फरिश्ते को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर किसी
किसी ऐसे अच्छे दोस्त को इस्तेमाल करते हैं कि जिसके साथ हमने अल्लाह की रजा की खातिर दोस्ती बनाई हुई होती है, उसके दीन की वजह से दोस्ती बनाई हुई होती है, तो उस दोस्त के जरिए से फिर आइडियाज आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना वो अल्लाह ताला के पसंद किए हुए असबाब होते हैं। इन असबाब के जरिए से फिर हमें अच्छी बातें भी मिल रही होती हैं और शैतान भी सबब ही होता है। शैतान भी अल्लाह ताला के असबाब का ही एक एक, एक मोहर है खाली, ठीक है, कि जिसके वास्ते से अल्लाह ताला बुरा ख्याल जो है वो डलवा रहे होते हैं हमारे दिलों में। क्या कहा, इन आवर इंडियन सोसाइटी ऑल द किड्स टीचर्स आर हिंदू टीचर्स, टीचिंग देम क्लासमेट्स एंड टॉपर्स आर ऑलमोस्ट हिंदूज, हस्बैंड्स आर डीलिंग विद नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स एंड वर्कर्स इवन बॉस इन आवर डेली लाइफ, सो वी शुड इग्नोर ऑल ऑफ देम, वी शुड इग्नोर ऑल ऑफ देम। ये इग्नोर का लफ्ज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात तो ये कि बच्चों की जो स्कूलिंग है ना, इस स्कूलिंग के बारे में बहुत मेजर हमें इनकलाब की जरूरत है, राइट। हम अपने बच्चों को यानी इंडिया की हिंदू सोसाइटी की खाली बात नहीं कर रहा, सऊदी अरब की मुसलमान सोसाइटी भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान की मुसलमान सोसाइटी भी इसमें शामिल है। बच्चों को हम उठा करके बीच समंदर में फेंक देते हैं, गुनाह के बीच समंदर में फेंक देते हैं, और उनके हाथों को, ये इंडिया के बहुत बड़े आलिम मौलाना सजाद नुमानी साहब के अल्फाज को मैं नकल कर रहा हूँ, ठीक है ना, हम बीच समंदर में उनको फेंकते हैं गुनाह के, उनके हाथों को हमने पीछे की तरफ बांध दिया होता है, रस्सी से बांध दिया होता है, और हम अपने बच्चों से ये तवक्को रखते हैं और उनको हुक्म देते हैं, बेटा देखो गीले मत होना, तुम्हारे कपड़े तुम्हारा जिस्म गीला नहीं होना चाहिए और तुम्हें डूबने की तो इजाजत ही नहीं है, है ना। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हाथ भी बांधे हुए हैं और समंदर के बीचों बीच उनको पानी में धक्का भी दे दिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाल है जब हम जो है ना वो स्कूल के बारे में जो है ना वो दुनिया अपनी दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर फैसले करते हैं, ठीक है, कि अपने बच्चों को हर किस्म के स्कूल में जो है वो बगैर किसी प्रिकॉशनरी मेजर्स के, बगैर किसी तैयारी के उठा के भेज देते हैं, और फिर हम कहते हैं ये मुसलमान क्यों नहीं, अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बनते, ये काफिर क्यों हो जाते हैं, ये दहरिये क्यों हो जाते हैं, ये मुल्हिद क्यों हो जाते हैं, राइट। तो भाई वो जो हो जाते हैं वो तो हो जाते हैं, उनका मामला उनके उनके और अल्लाह के दरमियान, लेकिन हम नहीं बच सकेंगे फिर कयामत के दिन, राइट। उस दिन जो है ना वो हमें घसीट करके अपने साथ जहन्नुम में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है ना, ये इतना आसान सवाल नहीं है कि वी शुड इग्नोर देम, ये इग्नोर का मसला की थोड़ी है खाली। भाई आपको वो तार वाली मिसाल समझाई है ना, तार लगा रहे अंदर करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों से आप ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये तार भी लगा रहे और करंट भी ना हो। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि जी करंट आना शुरू हो गया, वो कैसे रोकें उसको। ये तो बड़ों की बात थी कि बड़ों को ऐसे ताल्लुकात रखने होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स के, जिसके अंदर मोहब्बत के जज्बात ना हो, लेकिन बच्चे इसके केपेबल नहीं होते। बच्चों को तो आपको तार भी हटाना पड़ता है बीच में से, बच्चों को तो आपको फिजिकली डिस्टेंस करना पड़ता है बुरे माहौल से, ठीक है ना। और अगर नहीं करेंगे ना तो फिर उनसे तवक्को मत रखें कि वो अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनेंगे, बल्कि मुसलमान रहेंगे। आजकल तो मसला ये मुसलमान बनने का नहीं है, मुसलमान रहने का है, ठीक है, कि वो ईमान की सलामती के साथ जो है वो दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। मोस्ट पीपल आर नॉट हैविंग टेलीविजन बट दे सी एवरीथिंग इन मोबाइल ऑल्सो, तो मोबाइल जो होता है ना जिसके अंदर वो टेलीविजन के ड्रामे देख रहे होते हैं, तो उस मोबाइल के लिए फिर टीवी का लफ्ज इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। खाली मोबाइल कहने से बचत को थोड़ी हो जाती है। शेख साहब ऐसा हमारे साथ रमजान में क्यों वसाविस आते हैं जबकि शैतान कैद होते हैं? नहीं, सारे शैतान कैद नहीं होते, बल्कि जो बड़े बड़े शैतान होते हैं उनकी कैद के बारे में तो हदीस मुबारक से साबित है, लेकिन एक तो छोटे शैतान मौजूद होते हैं वसवसे देने वाले, जैसे ये जो हमारा प्राइवेट शैतान है, ये कोई कैद वैद नहीं होता, ये लगा रहता है हर वक्त, ठीक है। तो जब वो लगा हुआ है तो असल में तो उसी ने काम करना है ना। और दूसरा ये कि हमारा नफ्स भी जो होता है ना वो इन बुरी चीजों का इतना आदी हो जाता है, और इतना जो है ना वो हम बुरे माहौल में रह रहे होते हैं कि हमारा अपना नफ्स ही जो होता है ना उस माहौल से ये बुरे आइडियाज खुद ही ड्राइव कर रहा होता है, अब किसी शैतान की जरूरत भी नहीं रहती हमें, ठीक है ना। और ये तो मीडिया जो है ये किस किस खाते में जाएगा, फिर शैतान तो बंद हो जाता है, मीडिया तो बंद नहीं होता ना, ठीक है। तो मीडिया देखेंगे तो फिर तो शैतान की जरूरत भी नहीं है, वो तो बहुत उसके ऊपर लोगों ने बातें लिखी हैं, ठीक है। जिन्नों में हसद होता है और उस हसद से नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ जिन्नों में जो है वो इंसानों से सबसे ज्यादा हसद इन जिन्नों के अंदर ही होता है। आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस ने हसद किया था, इसी वजह से उसने जो है वो उनको जन्नत से भी निकलवाया और फिर बाद में भी जहन्नम में डालने की वो उनकी औलाद को कोशिश करते रहता है। हमको जो ड्रीम्स में हमारे बुजुर्ग देखें दिखें तो वो कौन है? जिन है। जरूरी नहीं है कि वो जिन हो, लेकिन इसका एहतमाल ज्यादा होता है। अगर हमारे वैसे जो जो जागते हुए हालात हमारे कोई तकवा परहेजगारी वाले नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमें ख्वाब के अंदर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो बुजुर्ग नहीं है, असल में जिन जो है ना वो बुजुर्ग की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर वैसे हमारे हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाकई, तो अच्छे लोग भी ख्वाब में आते हैं, ठीक है। क्या कल्ब जिक्र के लिए बैठना जरूरी है? बच्चों के साथ बैठना मुश्किल होता है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो जब बच्चे सो रहे हों कोई ऐसा टाइम निकाल करके बैठना फिर भी पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिलवटों में वक्त निकाल करके बैठना तो पड़ेगा, उससे कम से कम यानी एक स्टार्ट हो जाता है ना मामला। जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर जब गाड़ी स्टार्ट हो गई ना एक दफ़ा, तो अब कोई थोड़ी आपको हर मरतबा जो है वो चाबी को घुमाना पड़ता है या जो है वो चार्जर लगाना पड़ता है गाड़ी के लिए, वो चार्जिंग केबल्स जो होते हैं जंपिंग केबल्स, राइट। फिर एक दफ़ा जंप करके गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब वो चलती रहेगी, ठीक है ना। फ्यूल मौजूद था गाड़ी के अंदर और बाकी चीज़ें भी अपनी ठीक ठीक हैं, वो गाड़ी चलती रहेगी, चार्जिंग आपको हमेशा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू में तो चार्जिंग करनी पड़ती है ना। तो इसी वजह से दिल की भी चार्जिंग जो होती है वो इब्तिदा में लाजमी होती है। सो शुड वी टेक इट आउट, शुड वी टेक इट आउट फ्रॉम दिस स्कूल? इसके बारे में आपको संजीदगी के साथ जिनके साथ आपका इस्लाही ताल्लुक है, ठीक है, उनके साथ आपको तफसील के साथ संजीदगी के साथ इस को डिस्कस करना चाहिए कि अपने बच्चों की स्कूलिंग का मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक क्लास में खाली हाँ ना का जवाब देकर के तो आप उन बच्चों को स्कूल से नहीं निकलवा सकते ना। पहली बात तो आप निकलवाएंगे नहीं इस तरीके से, और अगर निकलवा लिया तो फिर जो है वो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, सही है, फिर वो एक और नई मुसीबत बन जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको जनरल बातें बताई जा रही हैं, असल में जो एक्शन लेना होता है ना वो बगैर मशवरे के नहीं लिया जाता है। सो व्हाट इज द अदर ऑप्शन फॉर स्कूल लाइक होम स्कूलिंग? जी, होम स्कूलिंग जो है वो बदकिस्मती से जिन लोगों को ईमान की फिक्र होनी चाहिए वो तो ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो काफिर है ना, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हत्ता के हर किस्म के काफिर, हजारों लाखों नहीं मतलब बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में दुनिया के अंदर लोग हैं जो कि अपने बच्चों को सिर्फ होम स्कूलिंग करवाते, ठीक है ना। तो अगर वो अपने अपने बच्चों की दुनियावी बेहतरी की खातिर इस स्कूलिंग सिस्टम की जो मुजर्रात हैं उनसे अपने बच्चों को बचाने की खातिर होम स्कूलिंग करवा लेते हैं, तो जिनको अपने ईमान की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है, वो क्यों नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये एक जनरल बात है अगेन कि जो आपके सामने रखी गई है कि ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द वैलिड एंड परफेक्ट ऑप्शंस जो इसको के लाखों लोग दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक के लिए जाहिर है ये चीज अप्लाई नहीं होती। और ये एक और भी बात याद रखें कि होम स्कूलिंग ऐसा नहीं है कि बस होम स्कूलिंग करवा लिया अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। यानी इट्स अ होल पैकेज, आपको सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ना, लेकिन दिस इज वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस डेफिनेटली। स्मॉल थर्ड ग्रेड एंड फिफ्थ ग्रेड, अब ये आपने खन्नास इंसानों में भी हो सकते हैं? नहीं, खन्नास हाँ, हम कुछ लोगों को खन्नास कहते तो हैं, ठीक है। तो वो अगर जाहिर है इस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है कि बस हर वक्त मौका मिलकर जैसी मौका मिले फौरन आपको जो है वो को ये वसवस आपके अंदर डालें और बुराई का ख्याल डालें, तो फिर हाँ वो इंसानी खन्नास बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे कोई हदीस मुबारका में मैंने तो नहीं सुना कि कोई इंसानी खन्नास होते हैं, लेकिन कुछ लोग खन्नास का रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं इंसानों में। लेकिन शयातीन मिनल यानी मिनल इंसिवल जिन जो है ये तो कुरान से साबित है, ठीक है। तो शैतान असल में रिबेलियस यानी बागी चीज को शैतान कहते हैं। अब ये शैतान जिन्नों में तो होते ही हैं, सबको पता है, इंसानों में भी होते हैं, हत्ता कि कोई जानवर भी ना, अगर बहुत जैसे घोड़ा है, वो घोड़ा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा, अपने मालिक को जो है वो बैठने नहीं दे रहा, तो उस घोड़े के लिए भी उमर अज़तरान की वो असर मौजूद है कि उमर अज़तरान ने उस घोड़े को भी शैतान का, राइट, यानी अरबी जुबान में शैतान का लफ्ज जो है वो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो कि बागी तागी हो जाए, रिबेलियस हो जाए और बिल्कुल ही जो है ना वो यानी अपने मालिक की मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो बच्चों को शैतान कहते हैं ना, तो वो कुछ लोग तो माशाल्लाह ये भी लिख रहे हैं बच्चों का शैतान कहना नहीं चाहिए। जाहिर है नहीं कहना चाहिए, ऑफकोर्स अपने बच्चे के बारे में इतना बुरा लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा बन जाए कि बिल्कुल ही जो है वो बगावत पे उतर आए ना, तो अब उसको जाहिर है शैतान ही कहेंगे। कल्बी जिक्र या कोई भी बात फरिश्ते लिखते हैं। कल्बी जिक्र के बारे में जो मशायख फरमाते हैं वो यानी कल्बी जिक्र जो है ना, बस इतना लिख लेते हैं कि इसका जो कल्ब है वो यानी बस जिक्र की हालत में, ठीक है ना। अब वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है इसका जो है ना, वो फरिश्तों को तफसील नहीं पता होती, ठीक है, बस वो ये नोट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बस है, बस कुछ एक, एक बड़ी ही जो है ना वो एक प्राइवेट किस्म की, खास किस्म की कैफियत में ये है। कल्बी जिक्र के बारे में यानी जैसे रोजे का है ना कि असौमुली व अना अज्जी बिही, ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा, ठीक है भाई सवाब, यानी फरिश्ते जो है वो रोजे का सवाब नहीं लिख सकते, इतना जबरदस्त, क्योंकि बिल्कुल बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है वो राजो न्याज, अल्लाह और बंदे के दरमियान, ठीक है। हाँ जज़ाकुमुल्लाह, आपने मदद सुनवाई, हज़रत के ये अल्फाज थे कि फरिश्तों की खुशबू आती है कल्बी जिक्र के वक्त, वो वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अल्लाह और बंदे के दरमियान ऐसा है कि इवन फरिश्ते भी जो है ना वो इससे वाकिफ नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर उसका हिसाब फिर क़यामत के दिन डायरेक्टली देना होता है, ठीक है। वो कल क्या शेर लिखा था, खैर अभी आप लोगों के मैसेजेस हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, काफ़ी टाइम अब हो चुका है। पुराने किए हुए गुनाह ख्याल में रिपीट होते हैं तो क्या ये वसाविस होते हैं कि इनकी लज्जत याद दिलाकर शैतान मैनिपुलेट करता है, यूजुअली जब जुबान का जिक्र कर रहे हैं तब कभी कभी ख्याल में ऐसी चीज आती है। हाँ जब जुबान से जिक्र कर रहे होते हैं तो शैतान तो जहन के साथ तो वो मशगूल फिर भी रह 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 सकता है, ठीक है ना, यानी उसकी जो ये अभी हरकतें हैं ना वो ख़त्म नहीं हुई होती जब हम जुबान से खाली बैठ के जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो वो इस तरह से पुराने गुनाह याद दिलाता है और उनकी लज्जतों को याद दिलाता है और जहन के अंदर, ठीक है ना, तो ये सब चलता रहता है। इस मामला जो कल्बी जिक्र है उसका भी सवाब मिलता है या जुबान से भी अदा करना होता है? नहीं, कल्बी जिक्र के बारे में जैसे अभी बात हुई ना कि फरिश्तों को खुशबू आती है, वो उसको नोट कर लेते हैं और उसके फिर यानी बेहिसाब जिक्र, बेहिसाब सवाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा होता है। और इसका एक इमीडिएट फायदा जो हमें अभी हो रहा होता है ना वो ये होता है कि कल्बी जिक्र की वजह से जो है ना फिर हमारा कल्ब जो है वो इतना मजबूत हो रहा होता है, इतना उसके अंदर जो है वो तवानाई और एनर्जी आ रही होती है कि अब वो कल्ब जो है वो हमारे नफ्स के ऊपर गालिब आने की ताकत उसमें आ जाती है, ठीक है। तो अब जो है ना फिर हमारे सारे अमाल जो हैं वो फिर अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और गुनाहों से फिर हमें नफरत हो जाती है, हम फिर हम गुनाहों की तरफ खुद ही नहीं जाना चाहते। तो कल्बी जिक्र का जो हमें इमीडिएट फायदा इस दुनिया की जिंदगी में हो रहा होता है ना, भाई सवाब तो क्यामत के दिन मिलेगा ना, जन्नत में जाकर के मिलेगा ना, नहीं इस दुनिया के अंदर, वो ये होता है कि अब हमारे अमाल खुद ब खुद जो है, यानी खुद ब खुद तो नहीं, ऑफकोर्स इस जिक्र की वजह से जो है अमाल संवरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो इस्लाही मेहनतें होती है ना मशाइख की, तो उनके अंदर कल्बी जिक्र जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन के तौर पर, एंटीबायोटिक मेडिसिन के तौर पर बताया जाता है, ठीक है, ताकि बंदे की ऐसी परमानेंट इस्लाह हो जाए कि फिर उसके खुद ही उसके लिए जो है वो गुनाहों से बचना मुमकिन हो जाए और नेकियां करना उसके लिए आसान हो जाए। 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, पहले वो सऊदी अरब में थे। मेरे बड़े भाई सऊदी अरब, उनके बारे में मेरे टीवी अब ये उर्दू में लिखा है, यहाँ पे वो असल में पूरा जंबल डब हो जाता है। हाँ, बयान आशिक व माशूक रमज़ेस्त रमज अस्त किराम कातिबीन, नहीं वो था बाहम खबर नीस्त इज कारिन डिफरेंट फ्रॉम खन्नास, हाउ इज कारिन डिफरेंट फ्रॉम खन्नास। खन्नास प्राइवेटली हर वक्त का साथी होता है और करीन قرین جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا, تو وہ قرین جو ہوتا ہے وہ یعنی وہ پھر اس کے علاوہ جو دوسرے شیاطین ہوتے ہیں کہ جو کہ پھر ہمارے یعنی ساتھی بن جاتے ہیں, یعنی یہ ہر وقت ساتھی نہیں ہوتے بلکہ ساتھی بنا دیے جاتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مزین بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایسے شخص کا کہ جس کے اوپر قرین مسلط کر دیا جاتا ہے, تو اب اس کا معاملہ بالکل ہی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. خناس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, ایون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا ہوا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن قرین جو ہے یہ تو اس شخص کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کا کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے اور پھر وہ اس کو اور زیادہ خراب کرتا ہے. وضو کر کے ٹیک لگا کر بیٹھیں اور اونگ آ گئی اور فوراً آنکھ کھل گئی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹیک ایسی تھی کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جاتا پیچھے سے تو آپ گر جاتے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسی ٹیک تھی تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ہاں ٹوٹ جاتا ہے. اور ٹھیک ہے, اچھا کافی ایکسٹرا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں گے. السلام علیکم. آپ کا جو یہ اردو کا سوال تھا اگر آپ واٹس ایپ پہ الگ بھیج دیں تو پھر اس کو پراپر نظر آ جائے گا, تو پڑھ کے پھر دیکھتے ہیں. بس شکریہ.